से जा प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान ईश्वर से जा प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान उच्च विचार शुभ कर्मों से उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान जग में बनता सबसे महान ईश्वर से जा प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान बन जाए वो गुणवान दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है जैसे बल से झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहां सुंदर रचता अपना जहां ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान बन जाए वो गुणवान
Good evening. मैंने सुबह में ही कहा था कि आप इस भट्टी के दौरान हमारी अनेक सीनियर अनुभवी प्यारे बाबा और प्यारी जगदम्बा माँ की पालना ली हुई अनेक दीदियों और अनेक दादाओं से मिलेंगे है ना? और ये पांडव भवन वैसे भी ये स्थान प्यारे बाबा की प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा की विशेष और प्यारी जगदम्बा माँ की याद दिलाता है तो उनके अंग संग रहे हुए जो भाई बहन जो आज यज्ञ को यज्ञ के आधार स्तंभ भी साथ साथ बने मम्मा बाबा के विश्व के कोने कोने में जाकर बाबा की अनेक जो बाबा के बच्चे छिपे हुए लाल उनको जगाने के निमित्त बने अपना जीवन सर्वस्व न्योछावर किया तो यहाँ उनका मिलन होता है यहाँ पांडव भवन में वो संगम होता है और उसमें हम भाई बहनों को लाभ मिल जाता है ना? ये एक वो स्थान है जो अनेक स्थानों से आए हुए हमारे वरिष्ठ दादियां दीदियां दादाएं यहाँ आकर के मिलते हैं अगर आपने यज्ञ इतिहास के फोटोज देखे हों, देखे हैं आपने फोटोज देखे हुए हैं, तो उस इतिहास में एक पन्ने में आपने देखा होगा एक छोटी सी बच्ची बाबा के साथ खड़ी है, यहाँ इधर ही हाइट तक शायद छोटी है, और बाबा को ऐसे पकड़ लिया है। पता है वो छोटी सी बच्ची कौन थी? ये हमारी रानी दीदी, बाबा की लाडली, मीठी प्यारी। आप 6 वर्ष की उम्र में बाबा के पास आई, दिल्ली कमला नगर से ज्ञान लिया 1953 में, 1953 में। और जब मधुबन में आए, 2-3 मास के बाद ही मधुबन में आना हुआ, और जो मधुबन में माउंट अबू में, तब तक ये पांडव भवन नहीं था, ये जहां आज आप बैठे हैं, उसके पहले जो कोटा हाउस था, जब बाबा पाकिस्तान से आए इंडिया में, और जहां बाबा आकर के रहे कोटा हाउस में, वहां पर आप बाबा से पहली बार मिले 6 वर्ष की उम्र में। बाबा बहुत प्यार करते थे। आपकी लौकिक माता जी पुष्पाल बहन, वे भी हैम्बर्ग में, जर्मनी में सेवाओं में सेंटर पर ही रही। और आपकी लौकिक बड़ी बहन सुधा बहन, जो बुरहानपुर महाराष्ट्र में पूरा सब जोन संभाला जिन्होंने। तो आप 8 वर्ष की, जब आपकी जब आप 8वीं में पढ़ती थी, 12 वर्ष की उम्र थी, थोड़ा सा लौकिक पिताजी का बंधन था, तो बाबा ने आज्ञा दी। अमृतसर में बाबा ने एक स्थान लिया, एक प्रॉपर्टी, एक फ्लैट खरीदा था। तब तक पांडव भवन भी बाबा ने खरीदा नहीं था। बाबा प्रॉपर्टी लेने की, अगर आप सबको पता हो, बाबा पहले प्रॉपर्टी खरीद करने की मना करते थे। बाबा कहते थे कि प्रॉपर्टी किराए पर लो, खरीदनी नहीं है। तो ये पांडव भवन भी खरीदा नहीं था शुरू में, पोखरण हाउस माना जाता था ये। लेकिन उससे पहले बाबा ने, इसको खरीदने से पहले बाबा ने अमृतसर में एक प्रॉपर्टी खरीदी, और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद बाबा की आज्ञा हुई, पुष्पाल बहन और उनके परिवार, जिसमें रानी बहन 12 वर्ष की थी, कि दिल्ली से आप सब वहां जाओ और वहां जाकर सेवा करो। वो दिन सो आज का दिन, पीछे मुड़के देखा नहीं है। तब से लेकर के आप यज्ञ में समर्पित रूप से रही हैं। आपने पढ़ाई भी अपनी सेंटर पर रहकर ही पूरी की। आगे पढ़ने के लिए माताजी ने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो यही वाली पढ़ाई पढ़नी है, इसलिए मैट्रिक के बाद यही वाली पढ़ाई पढ़नी शुरू कर दी चंद्रमणि दादी के साथ। चंद्रमणि दादी को देखा है आप सबने, किसी ने, है ना, किसी किसी ने देखा होगा चंद्रमणि दादी, जिनको पंजाब में सब दीदी कहा करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये है ना बाबा की किताबें, ये पढ़ो, तो बस वही पढ़ती रहती थी। और फिर तो बाबा ने आपको अनेक स्थानों पर भेजा, बाबा ने बॉम्बे भी भेजा, कहा बॉम्बे देखा है, नहीं देखा, जाओ घूम के आओ। तो बॉम्बे में भी जो सबसे पहला स्थान था, बम्बई में एक स्थान था वाटरलू मेंशन, तब तक दूसरे सेंटर्स बने नहीं थे बम्बई में, तो वो वाटरलू मेंशन में आप रहे, और वहां दादी कुमारका के साथ, प्रकाशमणि दादी के साथ आपने सेवाएं दी। तो काफी स्थानों के जो शुरू के स्थान है, वहां रह करके आपने बाबा को, बाबा की सेवा में अपना सहयोग दिया है। लेकिन क्योंकि बम्बई में थोड़ा वातावरण ह्यूमिड वाला होता, भेज वाला वातावरण होता है, इसलिए थोड़ा डॉक्टर ने मना किया कि यहाँ नहीं रहना, तो बाबा ने अमृतसर बुला लिया। थोड़ा समय अमृतसर रहे, फिर लखनऊ में भी रहे, लेकिन फिर बाबा ने कहा बच्ची ईस्टर्न की सेवा आप संभालो, और ईस्टर्न में भी फिर कलकत्ता में 2 साल रहे, लेकिन फिर बाबा ने बिहार की सेवा, बिहार में मुजफ्फरपुर, तो वहाँ 50 वर्षों से ईस्टर्न में समर्पित रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बहुत बड़ा इनका अपना सब जोन है, जहाँ पर ईस्टर्न का एक हिस्सा है मुजफ्फरपुर ना, बिहार एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ईस्टर्न में अपने आप में बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, तो आप वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बाबा की जैसे ना कोई लाडों से पला होता है ना, तो ऐसे बाबा मम्मा के हाथों से पली हुई दीदी, हमारी रानी दीदी, हम उनका एक हाथ की ताली से फिर से स्वागत करते। ताली बजाई, ताली बजाई, सबने बजाई ताली। आपका जो विषय है वो है अनुभूति का आधार, अंतर्मुखी अवस्था। तो कैसे अंतर्मुखी अवस्था को प्राप्त करें वो आपको बताएंगे, कि कैसे अनुभव अगर करना है तो जीवन में अंतर्मुखी अवस्था चाहिए। रानी दीदी,
ओम शांति। आप सभी अनुभवी मूरत बैठे हैं, बाबा ने जितना पढ़ाई पढ़ाई है, एक एक बात का अनुभव, एक एक बात का अनुभव। अनुभवी जब अपने अनुभव की बात सुनाता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। बाबा भी कहते थे, हमारी दादियों ने हमें सुनाया, जब पांडव भवन में आए तो बहुत लोग कोर्स करने आते थे, कोर्स करा के बाबा के पास गई। बाबा ने पूछा, ज्ञान सुनाया या सुख पहुंचाया? जानकी दादी ने सुनाया ये, तो दादी ने बाबा से पूछा कि ज्ञान सुनाना और सुख पहुंचाना क्या एक ही बात है? बाबा ने कहा हाँ, सुख स्वरूप होकर ज्ञान सुनाएंगे तो सुनने वाले के अंदर जो दुख के कांटे चुभे हुए हैं निकल जाएंगे। वो महसूस करेगा कि मुझे ज्ञान सुनाया इन्होंने, लेकिन बहुत सुख मिला, मेरे अंदर का दुख निकल गया। फिर दादी कहती है, दूसरे दिन कोर्स कराया, फिर बाबा के पास गई। बाबा ने कहा, बच्ची अच्छा टीचर वो होता है जो पहले पढ़े फिर पढ़ाए। जब आप कोर्स कराओ तो एक घंटा पहले वही क्लास जो दूसरे को सुनानी है पहले अपने को सुनाओ। तो अनुभवी मूरत बनकर फिर ज्ञान सुनाएंगे। तो दादी ने अनुभव की बात सुनाई, कहा मुझे 7 दिन अपने को कोर्स कराने का अभ्यास हो गया। मैंने एक बार दादी से पूछा, आप रात 2 बजे से बैठकर मनन चिंतन करते हैं, इतना अनुभव करते हैं, हमारा तो इतनी देर मनन चिंतन नहीं चलता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हम चिंतन करने बैठते हैं 5-10 मिनट के बाद कई और बातों में ध्यान चला जाता है। तो दादी ने बताया कहा अपने को कोर्स कराओ। दूसरी बात उन्होंने कही, जब आप किसी को कोर्स कराते हैं एक घंटा सवा घंटा भी लग जाता है, जब आप अपने को कोर्स कराने बैठेंगे टाइम फिक्स करके, पूरी विधि बताई, टाइम फिक्स करके इतने बजे से इतने बजे तक बैठ के स्पेशल कोर्स कराने बैठे ऐसे बैठो। फिर उन्होंने कहा आप दूसरे को कोर्स कराते हैं घंटा सवा घंटा लगता है, जब आप अपने को कोर्स कराएंगे 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। लेकिन आप एक घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। अगर 15 मिनट में पूरा हो जाए अपने से प्रश्न पूछना, फिर अपने से प्रश्न, जैसे जिज्ञासु प्रश्न करता है तो 1.5 घंटा भी लग जाता है, फिर अपने से प्रश्न पूछना फिर जवाब देना, फिर प्रश्न पूछना फिर जवाब देना, फिर मतलब 1 घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। जब हम बैठे कोर्स कराने अपने को सेंटर पर गए, फिर अपने आप को कोर्स कराना शुरू किया, शाम को 4 से 5 का टाइम फिक्स किया, जहां औरों को कोर्स कराते थे वहीं बैठे, सोच लिया, नए व्यक्ति को सारे एग्जाम्पल देते हैं, पूरे नया व्यक्ति है ना वो, सारे एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे नए व्यक्ति की तरह सारे एग्जाम्पल पूरा डिटेल मुझे अपने को सुनाना है। ये नहीं समझना है कि हम तो जानते ही हैं। पहला दिन जब मैं कोर्स कराने अपने को बैठी पूरे विस्तार के साथ, शरीर क्या है आत्मा क्या है पूरे विस्तार के साथ अपने को समझाते गए, घड़ी में टाइम देखा 1/2 घंटा हुआ, 1/2 घंटे में हमारा पूरा विषय कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने अपने आप से प्रश्न किया, 1/2 घंटे से मैं अपने आप को सुना रही हूं कि मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है यही हूं, मैं आत्मा हूं ये मुझे महसूस नहीं हो रहा है। मुझे अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं आत्मा हूं, ज्ञान है मुझे, मैंने अपने आप को सुनाया है कि मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मुझे महसूस यही हो रहा है यही हूं, मैं माना ये। इसके बाद अपने को समझाना शुरू किया, ये प्रश्न था ना, अपने को दिखाया शरीर से आत्मा निकल गई, अब ये आंखें देखती नहीं, अब ये कान सुनते नहीं, अब ये मुख बोलता नहीं, माना आंखें नहीं देख रही है मैं देख रही हूं, कान नहीं सुन रहे हैं मैं सुन रही हूं, आंखें सिर्फ देखती हैं आंखें सुनती नहीं है, हम जिसको देख रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं आंखों ने नहीं सुना, कानों ने सुना कानों ने देखा नहीं, आंखों ने देखा आंखों ने सुना नहीं, कानों ने सुना कानों ने देखा नहीं, और ये मुख बोलता है मैंने देखा मैंने सुना, न इसने देखा न इसने सुना कौन बोल रहा है, मैं आत्मा हूँ, मैंने ही आँखों से देखा, मैंने ही कानों से सुना, मैंने ही मुख से बोला, मैंने ये काम अपने हाथों से किया। अपने आप को दिखाना शुरू किया, शरीर अलग है आत्मा अलग है, अपने आप को दिखाते दिखाते क्या हुआ, मैं पार हो गई, मैं शरीर से पार हो गई, मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं परम धाम में बैठी हूँ, शरीर यहाँ बैठा है मैं वहां बैठी हूँ, आवाज से पार, इस शरीर से पार, अब मैं बाबा की शक्तियों को ग्रहण कर रही हूँ, मैं बाबा के सामने बैठी हूँ, वो शक्तियां मेरे में प्रवेश कर रही है। जब एक घंटा पूरा हुआ मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं बोल नहीं सकती थी, 5 बजे कुछ लोगों को मैं कोर्स कराने वाली थी, लोग आ गए थे, लेकिन मेरी स्थिति थी कि मैं बोल नहीं सकती। मैंने एक दूसरी बहन को कहा कि आप क्लास कराओ, मैं बाहर गैलरी में जाके बैठी और उस चिंतन मनन और अनुभव का प्रभाव क्या हुआ, 1 घंटा मैं उसी स्थिति में बैठी रही, देहभान से पार, आत्मा को देख रही हूँ, बाबा को देख रही हूँ और अनुभव कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं आवाज में नहीं आ सकती हूँ, एक घंटा अपने को क्लास कराने के बाद 1 घंटा मैं उसके अनुभव में बैठी रही, फिर मैंने अपने आप से पूछा रोज 1-1 घंटा योग में बैठते थे क्या करते थे, ये अनुभव तो होता ही नहीं था, देह भान से न्यारा आत्मा का अनुभव तो होता ही नहीं था, क्या करते थे रोज बैठकर। बाबा ने बताया है पहली स्टेज है मनन, अपने आप को पढ़ाना है मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है, ये जड़ है मैं चेतन हूं, ये स्थूल है मैं सूक्ष्म हूं, ये विनाशी है मैं अविनाशी हूं, ये झूठी काया है मैं सत्य हूं, मैं अमर हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, ये शरीर स्थूल है ये नाशवान है ये जड़ है, मैं दोनों को अलग अलग देख रही हूं, अनुभव कर रही हूं, महसूस कर रही हूं, ये शरीर यहाँ बैठा है, मुझे बाबा के पास जाना है, मैं आत्मा जा रही हूँ बाबा के पास, परम धाम में मैं आत्मा बैठी हूँ, ये शरीर नहीं बैठा है। इस तरह से हमने 7 दिन अपने को कोर्स कराया, इससे क्या हुआ, 1 घंटा मनन चिंतन का अभ्यास हो गया। दादी ने अपने अनुभव की बात सुनाई, बोला मैं आज दिन तक भी अपने को 1 घंटा रोज क्लास कराती हूँ, मैंने अपने को क्लास कराना बंद नहीं किया। मेरा टाइम फिक्स है जिस टाइम मुझे 1 घंटा अपने आप को पढ़ाना है। 1 घंटा क्या करना है, चिंतन चिंतन चिंतन। आप अपने आप को ये कह कर बैठेंगे कि मुझे 1/2 घंटा इस विषय पर चिंतन करना है, तब चिंतन चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ज्ञान का सुख किसने लिया? जिसने चिंतन किया। जब चिंतन करके अपने को पढ़ाने का अभ्यास हो गया, अपने आप को समझाने का अभ्यास हो गया, हम अपना टीचर बन गए, फिर क्या होगा? कभी किसी को डांट दिया, कभी किसी को गुस्से में कुछ कह दिया, फिर अपने को पढ़ाना शुरू करेंगे, क्या ये मेरा बोलना उचित था? क्या इसी तरह से बोलकर ही काम चलेगा? अब मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं अपने को समझा रही हूँ, मीठा बोलकर भी काम हो सकता है, मीठे शब्दों में भी समझाया जा सकता है, क्योंकि मुझे अपने आप को समझाने की आदत पड़ गई। अब हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं, अब हम अपने आप को समझा रहे हैं। बाबा कहता है अपने से बातें करो, बाबा से बातें करो, अपने से बातें करो। अपने को मुरली पढ़ लिया आपने, उसके बाद अपने को अकेले बैठकर बिना मुरली हाथ में लिए अपने को बाबा के महावाक्य सुनाओ, देखो कितने याद हैं, वरदान याद हैं, स्लोगन याद हैं, पॉइंट्स याद हैं, अपने को सुनाओ। मुझे अपना टीचर बनना है, अपने को मुझे बनाना है, खाली पढ़ाना नहीं है, बनाना है। बाबा ने हमें कहा है मन मेरे में लगाओ, मन मेरे में लगाओ। अब हम थोड़ा मन के बारे में चिंतन करते हैं, क्या है मन? मन किसे कहते हैं? मन की क्या विशेषताएं हैं जो मुझे बाबा की ओर ले जानी है? मन अर्थात मनन शक्ति। कैसी शक्ति? कभी रुकती ही नहीं, रात दिन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। कभी संकल्प रुकता है? रुकता है कभी? मनन लगातार, ये ऐसी शक्ति है, निरंतर काम कर रही है, निरंतर चिंतन कर रही है, चिंतन करती है, इसीलिए इसको चेतन कहते हैं। मनन करती है इसलिए इसको मन कहते हैं। कहते हैं मन एक घोड़े की तरह है, घोड़ा दौड़ना जानता है, छोड़ दीजिए घोड़े को, दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, इधर 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 उधर 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 दौड़ता रहेगा। उसको ये पता नहीं है मुझे जाना कहाँ है, केवल दौड़ना जानता है। इसी तरह हमारा मन केवल चिंतन करना जानता है, क्या चिंतन करना है ये मन नहीं जानता। कब इसके बारे में, कब उसके बारे में, कब उसके बारे में, कब 10 साल पीछे के बारे में, 4 साल पीछे के बारे में, कब कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा। ऐसा होता है ना कुछ चिंतन चलता ही रहेगा। इसलिए बाबा कहते मन रूपी घोड़े पर सवार हो जाओ, बुद्धि लगाम है, लगाम पकड़ो। अब बुद्धि मन को कहती है इधर चलो तो उधर चलेगा। अगर हम चाहते हैं अपने को कोर्स कराएं, अपने को क्लास कराएं, तो ये काम कौन कर रहा है? बुद्धि। बुद्धि ने लक्ष्य दिया, अभी मुझे आत्मदर्शन करना है, आत्मचिंतन करना है, आत्मानुभूति करनी है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है, स्वस्थिति का अनुभव करना है। अब ये बुद्धि ने काम दिया, अब मन उधर जाएगा। बिना बुद्धि के ऑर्डर किए, उसको पकड़े हुए, लगाम पकड़े हुए, वो मन उधर नहीं जाएगा। हमेशा अपने को एक क्वेश्चन देना, हमेशा अपने को एक काम देना, समय बांधना, इतने समय तक करना है तब चिंतन चलेगा। पहला मन का काम है मनन करना, निरंतर निरंतर, कभी रुकेगा नहीं। दूसरा, मन क्या करता है? इच्छा करता है, हर समय इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। वो इच्छाएं कभी रुकती नहीं, सुबह से रात्रि तक अनेक अनेक इच्छाएं पैदा होती हैं। तीसरा, मन महसूस करता है। किसी ने अच्छी तरह बात किया, सुख मिलता है। किसी ने थोड़ा अपमान किया, दुख होता है। छोटी बड़ी अनेक बातों से कभी सुख कभी दुख कभी कुछ महसूस करता है। मन का काम है महसूस करना, प्राप्त करना। चौथा, मन को आंख है। मन जिसके बारे में बात करता है उसको देखता है, जिस स्थान के बारे में बात करता है वो स्थान दिखाई देता है। कई वर्ष पीछे की बात याद करेंगे तो जिस स्थान पर जिस व्यक्ति ने आपको क्या कहा था वो व्यक्ति दिखाई देगा, उस जगह दिखाई देगी, उसके बोल सुनाई देंगे। ऐसा होता है ना, मन को आंख है। और मन को स्पीड है, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। वहां पहुंच जाता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां पहुंच जाता है। अब हमें मन को योग में स्थित करना है। अब क्या करना है? मनन करना है, ठीक है। दूसरा, इच्छा करना है। मुझे आत्मा का अनुभव करना है, करके उठना है। हम योग में बैठे हैं लेकिन देह भान से पार गए ही नहीं, आत्माभिमानी हुए ही नहीं, आत्मा का अनुभव किया ही नहीं। हम जब बहुत छोटे थे हमको यही पढ़ाया जाता था, जब तक आत्मा का अनुभव ना हो तब तक बाबा को याद नहीं करना, क्योंकि बाबा का कनेक्शन आत्मा से है। देह भान में बैठ के बाबा को याद करेंगे, प्राप्ति नहीं होगी। योग का आधार है आत्म अभिमानी स्थिति। मैंने एक बार चंद्रमणि दादी से कहा कि मैं योग में बैठती हूँ, मैं आत्मा का पाठ अपने को पढ़ाती रहती हूँ, मुझे आत्मा का अनुभव नहीं होता है। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, वो अनुभव नहीं होता है। तो दीदी ने मुझे कहा, तुम क्लासरूम में जाके बैठ जाओ, जब तक अनुभव नहीं हो उठना नहीं। क्योंकि ये तो योग का आधार है, आधार ही मजबूत नहीं हुआ तो योग क्या लगेगा। पहले तो देह भान से पार जाए। मैं जाके हॉल में बैठ गई, अपने आप को समझाते समझाते पढ़ाते 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 मैं देह से पार हुई। और उन्होंने हमको ऐसा अभ्यास कराया, जब योग में बैठना है पहले सोल कॉन्शियस होना है, पहले देह भान से पार जाना है, पहले अकेला होना है। योगी अकेला बैठा दिखाते हैं हर जगह, योगी बैठा है अकेला, मैं अकेला, मैं आत्मा हूं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। देह को भूले, संबंधों को भूले, सब कुछ भूल जाएगा, मैं और मेरा बाबा।
अब हम मनन भी कर रहे हैं और
देख भी रहे हैं,
आत्मा दिखाई दे रही है। किस आंख से? किस आंख से आंख तो आत्मा दिखाई दे रही है, मन की आंख से। हमने आकाश में चमकते सितारे देखे हैं, ऐसा ही रूप आत्मा का है। हम मन की आंख से आत्मा को देख रहे हैं। कोई ये नहीं कहे मैंने आत्मा को देखा ही नहीं। आप सबने देखा है आत्मा को? आप सबने देखा है? इन आंखों से नहीं, इन आंखों से नहीं, मन की आंख से। जो कहते हैं ना मैंने नहीं देखा है, मैं कहीं भी उनको बोलती हूँ, चलो पांडव भवन में शांति स्तंभ के सामने खड़े हो जाओ, फिर पूछती हूँ शांति स्तंभ दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है? किस आंख से दिख रहा है? उसी मन की आंख से आत्मा को देखो। ये नहीं कहना हमने तो आत्मा को देखा ही नहीं। जब परम धाम जाओ तो परम धाम देखो, वहां की लाल लाइट, अखंड ज्योति, ये आकाश के अंदर सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, और परम धाम में स्वतः प्रकाशित है पूरी वहां की लाइट प्रकाश। देखो अच्छी तरह से परम धाम को देखो, परम धाम में फिर शिव बाबा को देखो। वहां पर अपने आप को देखो। फिर मन क्या करता है? कोई व्यक्ति की याद आती है खुशी होती है, किसी व्यक्ति की याद आती है मन को दुख होता है, क्योंकि उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब हम शिव बाबा को देख रहे हैं, मेरे सुख का सागर मेरे सामने है तो मुझे सुख मिलना चाहिए ना। पहले हम भी समझते थे, दीदी हमसे पूछती थी अनुभव सुनाओ, हम कहते थे अभी तो योग लगाना शुरू किया है, धीरे धीरे अनुभव होगा। कहती थी नहीं, आप धूप में खड़े हैं, गर्मी बाद में मिलेगी, उसी टाइम लगेगी। हवा में खड़े हैं, हवा बाद में लगेगी, उसी टाइम लगेगी। वर्षा में जा रहे हैं, भीग रहे हैं, हम सुख के सागर के सामने बैठे हैं, हमको सुख नहीं मिल रहा है। हम शांति के सागर के सामने बैठे हैं, शांति नहीं मिल रही है। आनंद के सागर के सामने बैठे हैं, आनंद नहीं मिल रहा है। मन माना जो महसूस करता है उसको सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, इसको कहते हैं मन लगाना। चिंतन भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, वहां पहुंच भी गए हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, प्राप्ति भी कर रहे हैं, इसको कहते हैं मन लगाना। सारा दिन मन की स्टेट बनी रहती है। अकेला व्यक्ति बैठा है, कभी खुशी महसूस होती है, कभी दुख महसूस होता है, किसको याद कर करके। इसी तरह से बाबा को याद करके हमको अनुभूति ना हो, हमें महसूस ना हो, तो जब हम दीदी के पास रहते थे तो वो हमसे योग में बिठाती थी 4 घंटा, शाम को 4 से 8 बजे तक, बरसों बैठे हैं, सामने बैठी रहती थी पूरा टाइम। फिर एक एक को कहती थी अनुभव सुना के उठो, क्या पाया? अब हमको ये रहता था, हमको पाना है क्योंकि सुनाना है। कहती थी लेना सीखो, लेना सीखो। मम्मा उदाहरण देती थी, कहते शीशी में दवाई है, उसको सिरिंज में भरते हैं, इंजेक्शन को उसके अंदर घुसा देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर खींचते हैं, बुद्धि लगा दिया, फिर खींचना है, लेना है। हमें वो अनुभूति होनी चाहिए। मन को लगाना, और मन जाता कहाँ है, मन अपने आप दौड़ता है, अपने आप भागता है, कहाँ जाता है मन, जिसे प्रेम हो, जिसे संबंध हो, वहां आकर्षित होता है। हमारा संबंध है बाबा से, हमें प्राप्तियां हो रही है, हमें एक एक शक्ति बाबा से प्राप्त हो रही है, इसका अनुभव करना है। अगर अनुभव नहीं हो रहा है, माना मन लगा ही नहीं है। एक कवि ने मन से पूछा कि हे मन, लोग तो कहते हैं तुम बहुत चंचल हो, कभी रुकते नहीं हो, कहीं ठहरते नहीं हो, एक सेकंड भी तुम रुकते नहीं हो, दौड़ते रहते हो, इतनी तुम्हारी स्पीड है, तुमको वश करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तुम्हारा नाम मन किसने रख दिया? एक मन किसको कहते हैं? एक मन 40 किलो कहता, तुम्हारा नाम मन किसने रख दिया? एक तरफ तुम इतना हल्का है कि दौड़ता रहता है, और नाम तुम्हारा मन। समझ गए मन? हाँ, इतना वजन है उसके अंदर, उसको तो जहां बिठा देंगे वहां से उठेगा नहीं। तो वो कहता है, जिसको मेरा कहते हैं वहां मैं मन बन जाता हूं, मेरा, तो मेरा बाबा वहां से भागेगा नहीं, वहां से दौड़ेगा नहीं, उसको असली रूप में वो मन है, और मैंने उसके सारी विशेषताओं सहित हम बाबा के सामने बैठे हैं। हर टाइम हमारे मन के अंदर ये गुण है, ये शक्तियां हैं। तो देखना है, निरंतर मनन भी चलता रहे, चिंतन चलता रहे, दिखाई देता रहे, ठीक है, महसूस होता रहे, वहां पहुंच जाएं। ये हमारे मन की खूबियां हैं, इस सारे को यूज करना है, तब एकाग्रता की स्थिति बनती है। बाबा ने कहा है, तुम आत्म अभिमानी बनकर मुझे याद करोगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हम देखते हैं इस दुनिया में जब कोई पाप कर्म करता है, कोई अपराध करता है, उसको पकड़ते हैं, जेल में डाल देते हैं, जेल में रहने के बाद उसका विकर्म विनाश हो जाता है, है ना? जेल में रह के उसका विकर्म विनाश कैसे हो जाता है? खाता पीता सोता सब तो है ही है। सबसे पहली बात, उसको उसके परिवार मित्र संबंधियों से उसको अलग कर देता है, अकेला। वो वहां बहुतों के बीच भी उसे महसूस होता है, मैं अकेला। और बड़ा अपराध किया हो तो उसको अकेले ही रखा जाता है, एक ऐसी कोठड़ी में रख देते हैं जहां वो अकेला होता है। अब इसको हम अपने योग से तुलना करते हैं, वहां जबरदस्ती अकेला किया जाता है, यहां हम अकेला होके बैठते हैं, मैं आत्मा हूं, अकेली आई हूं, अकेले जाना है, किसी का चिंतन नहीं, मुझे सिर्फ अपने कर्मों का फल पाना है, दूसरे के कर्मों का फल मुझे नहीं पाना है। योग की पहली स्टेज है अकेला हो जाइए, योगी माना अकेला। हम अपने को आत्मा समझकर बैठे, अकेले होकर बैठे, और फिर बाबा को याद कर रहे हैं, जितना समय हम आत्म अभिमानी होते हैं, जितना समय हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, जितना समय हम अकेले होकर के बाबा को याद करते हैं, उतना हमारे विकर्म विनाश होते हैं। ये पहली कंडीशन है, यही है एकांत। यहां आती है एकाग्रता। एक बाबा के साथ बैठने से, एक की मत पर चलने से, हमने प्रतिज्ञा की है बाबा एक आपकी ही सुनेंगे, औरों की नहीं सुनेंगे, एक बाबा के महावाक्य सुनेंगे। और हम तो गोप गोपियां हैं ना, गोप गोपी की विशेषता है, हर टाइम मुरली की आवाज सुनाई देती है उसको, हर टाइम मुरली सुनाई देती, घर बैठे काम करते मुरली सुनाई देती थी। और हमारी विशेषता क्या है, हमारी विशेषता क्या है, हमें सारा दिन मुरली सुनाई देती रहे, मन बार बार मुरली की धुन पर आ जाए, मुरली के बाबा के महावाक्य सुनाई देते रहे, बाबा एक आपकी ही सुनेंगे, दूसरा एक आपको ही सुनाएंगे, अपने मन की बात आपको ही सुनाएंगे। बैठते हैं बाबा से बातें करते हैं, बाबा से रू रूहान करते हैं, उसका जवाब मिलता है, वो शक्ति मिलती है, वो पावर मिलती है, रिटर्न मिलता है उसका जवाब। तो योग का आधार पहले आत्म अभिमानी स्थिति, अकेले हो जाए, लाइट हो गए। आज कोई व्यक्ति का मन भारी है तो अपने चिंतन से थोड़े ही, किसके चिंतन से भारी होता है, दूसरों के चिंतन से। बाबा बैठा है, बाबा कहता है मैं बैठा हूं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं बैठा हूं, ये भी निश्चय है। जहां हम अकेले हुए वहां लाइट हो गए, दूसरे के कर्मों का हिसाब मुझे नहीं करना है, हमारे अंदर बाबा ने जगा दी है शुभ भावना की शक्ति। कई लोगों को बड़ा भय लगता है कि यहां पांचों विकारों को जीतने का ज्ञान दिया जाता है, ये तो असंभव है, मुश्किल है। और ये कहते हैं हम नर से नारायण बन जाएंगे, नारी सो लक्ष्मी बन जाएगी, डिफिकल्ट लगता है। हम उनको बताते हैं हम बन नहीं रहे हैं, हमको भगवान बना रहे हैं। जिसको भगवान बनाए वो नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, वो खुद बैठ के पढ़ा रहे हैं, कदम कदम गाइड कर रहे हैं, हमें बात बात में हर जगह प्रेरणा देते हैं, शक्ति बढ़ते हैं, वो हमको बना रहा है। हम तो केवल उसके सामने बैठे हैं, जैसे ड्रामा होने से पहले क्या होता है, एक एक एक्टर का मेकअप किया जाता है, भाई किसका राजा का रोल है, किसका सर्वेंट का रोल है ना, किसका जो रोल है उसको वैसा मेकअप होता है। हम बाबा के सामने बैठ जाते हैं, जाकर बाबा क्या करते हैं, हमारा मेकअप कर रहे हैं, हमारे नैनों में रूहानियत, गुण ग्राहक दृष्टि, हमारी वाणी में वरदानी बोल बाबा भर रहे हैं, वो हमको तैयार कर रहे हैं, वो हमारा मेकअप कर रहे हैं, हम तो केवल उनके सामने बैठते हैं बस। क्यों, मेकअप बिगड़े नहीं, वो ध्यान हमको रखना पड़ता है। हाँ, जब तक मैं उस स्टेज पर आ जाऊं तब तक मेकअप हाँ कायम रहे, वो ध्यान रखना पड़ेगा। हम उन्हें बताते हैं, दुनिया में मनुष्य ये नहीं जानते कि ये पांच विकार हमारे दुश्मन है, वो ये नहीं जानते। हम उन्हें बताते हैं इन पांचों विकारों को जीतना मुश्किल नहीं है। बाबा ने आसान तरीका सिखाया, जैसे बताया ना मन का काम क्या है, इच्छा करना। मन बार बार इच्छाएं करता ही रहता है। अब हमने कौन सी इच्छा जगाई है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे एक रस बनना है, एक रस रहना है, मुझे निर्विघन रहना है, मुझे शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप रह के कर्म करना है। अब ये मेरी इच्छा है, मैंने अपने आप को इस रूप में देखा। कोई कैसा भी व्यवहार करता है, मेरे मन की शांति शीतलता कायम रहती है। क्योंकि एक बार दादी ने अनुभव सुनाया, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी ने कहा कि पत्रकारों ने पूछा कि आप इतनी बड़ी संस्था को चला रहे हैं, आपको तो नींद नहीं आती होगी, इतनी बहनों की संस्था है, पता नहीं कितनी प्रकार की समस्याएं आपके पास आती होगी। दादी ने पहला जवाब दिया, अपने को हेड मानना ही हेडेक है, मैं अपने को हेड मानती ही नहीं, वो चला रहा है। दूसरा दादी ने कहा, मेरा सारा काम शांति और प्रेम से हो जाता है, मेरी बात सब शांति और प्रेम से मान लेते हैं, मेरे माइंड पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। अब दादी ये सुना रही थी, हम सुन रहे थे, हमने दादी के ये बोल पकड़ लिए, मेरा सब काम शांति और प्रेम से हो जाता है, मेरी बात सब शांति और प्रेम से मान लेते हैं। आप भी इसको पकड़ लीजिए, बार बार रिपीट करना, बार बार मन में रिपीट करना। लोग तो कहते हैं हम गुस्से से नहीं बोलते हैं कोई सुनता ही नहीं है, हम जोर से नहीं बोलते हैं तो कोई मानता ही नहीं है, तो जो बोलते हैं उनको करना पड़ता है। अगर हमारे मन में रहेगा मेरा सब काम प्रेम और शांति से हो जाता है, मेरी बात सब प्रेम और शांति से मान लेते हैं, तो हमारे एक्शन में आएगा, आएगा ना। इसीलिए हम देखते हैं कि दादियों के चेहरे पर शिकन नहीं आती। कोई गलती भी करता है, गलती करने वाले को पकड़कर दादी के सामने लाया गया, मैंने भी देखा, तो दादी क्या कर रही है, उसको देख के मुस्करा रही है। वो कह रहा दादी आगे से गलती नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, जब बस खत्म करो, उनके मुस्कराने से वो माफी मांग रहा है, डांटने से हो सकता है माफी ना भी मांगता, अपनी सफाई पेश करता है ना। तो ये हमारी इच्छा है ना, मेरा हर काम प्रेम और शांति से हो जाएगा, मेरे अंदर हर समय आनंद बना रहेगा, ये इच्छाएं हैं ना मेरी। हम इसको इच्छा शब्द नहीं कहते, ये मेरा लक्ष्य है। ये छोटे छोटे लक्ष्य अनेक हमारे बुद्धि में है, मुझे शीतल रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई कुछ भी बोले, मेरी मधुरता खत्म नहीं हो, मेरी मिठास बनी रहे, हम सबका सम्मान करते रहे। बाबा ने कहा है जो स्वमान में रहेगा वो सबका सम्मान जरूर करेगा। स्वमानधारी की रिजल्ट है सम्मान करने वाला, और अभिमानी की रिजल्ट है अपमान करने वाला। अभिमानी अपमान जरूर करेगा, स्वमानधारी सम्मान जरूर करेगा। हमें स्वमानधारी बनना है और सबका सम्मान करना है, यही हमको पढ़ाया गया है। तो हम उनको बताते हैं मनुष्य क्या मन इच्छाएं कामनाओं से भरा हुआ है, हर समय अपने आप को देह समझते हैं तो देह से संबंधित इच्छाएं उत्पन्न होती है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं। उसको बाबा ने ये नहीं कहा मिटा दो, इच्छाएं ना उठे कामनाएं ना उठे, ये नहीं कहा। क्या किया, उसका शुद्धिकरण किया, शुभ भावना शुभ कामना। हमारे हर संकल्प शुभ, हर संकल्प शुभ, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। मनुष्य की जब कामनाएं पूरी नहीं होती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो क्रोध आता है। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ उत्पन्न होता है। लोभवश संग्रह करता है, मैंने संग्रह किया इसलिए उसमें मोह हो जाता है, मैंने किया अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा। बाबा ने क्या किया? शुभ भावना, शुभ कामना। जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, अपमान करता है, तो हमारी शुभ भावना होने के कारण हमारी उसके ऊपर रहम की भावना, रहम की दृष्टि, कल्याणकारी दृष्टि, बदले की भावना नहीं, क्रोध नहीं आया, रहम भाव, सहयोग का भाव। अगर कोई क्रोध कर रहा है, हम चुप रहे, ये भी मदद है। वो कहता है अगर आप बोलते हैं तो यहां झगड़ा हो जाता, अच्छा किया आप चुप रहे, मदद किया। शुभ भावना वाला क्रोध नहीं करेगा, रहम सहयोग का भाव उसका जागृत होगा। लोभ के बदले त्याग की भावना। हमारा तन मन धन समय श्वास संकल्प सब सेवा में लग जाए, कल किसने देखा है? जो करना है आज करना है, कल किसने देखा है? लोभ वृत्ति नहीं, जो मेरा 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 है वो भी हम सेवा में लगाना चाहते हैं। मेरा को तेरा किया तो मौन खत्म हो जाता है। बाबा ने कहा अभिमान तो सब कुछ बाबा का दिया हुआ, तो अभिमान किस चीज का? केवल केवल अपनी भावनाएं ऊंची करने के कारण, अपनी शुभ कामना शुभ भावना को जागृत करने के कारण पांचों ही विकार मिट जाते हैं। एक का दूसरे से, तीसरे से, चौथे से लिंक है। इसी तरह से हम अंतर्मुखी होकर, सबसे बड़ा गुण है अंतर्मुखता, अंतर्मुखी होकर जब मनन चिंतन करते हैं, मनन करते करते मगन हो जाते हैं, हम दृश्य देखने लगते हैं, हम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं, हम बाप दादा को देखते हैं, हमारे सामने दृश्य क्लियर है, सामने है, हम वो सुख महसूस करते हैं, वो शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो किसी को भी समझाना या अपने को भी समझाना, ये पांचों विकारों का संबंध हमारी संकल्प शक्ति से है, हमारी भावनाओं से है। शुभ भावना अपने आप नहीं जगेगी, जगानी पड़ेगी। पहले अपने लिए, पहले अपने लिए शुभ सोचो। क्या सोचे? मैं विशेष आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं पांडव हूं, मैं महावीर हूं, मैं विजयी रतन हूं। बाबा ने मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगाया है, बाबा ने मेरे गले में शांति का हार पहनाया है, मेरे कदम कदम में पदम है, ये वरदान बाबा ने दिया है, ये अपनी महिमा, भरपूर महिमा करे अपनी। मैं भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली नहीं, पद्मा पद्म भाग्यशाली हूं, मेरे भाग्य में भगवान लिखा है, मेरे भाग्य में एक तरफ है भगवान, एक तरफ है भाग्य, और क्या चाहिए? सब कुछ मैंने पाया है, ये अपनी महिमा। फिर किसकी महिमा करें? ये भी याद करते रहे सारा दिन, मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। कभी तो ये नहीं पढ़ाया गया कि शांत स्वरूप हो जाओ, प्रेम स्वरूप हो जाओ। पहला दिन कोर्स करने वाला आता है ना, उसको कहते हैं आत्मा के साथ गुण है, याद कर लो मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप, लेकिन सारा दिन याद नहीं रहता। सारा दिन क्या बोलते हैं, मूड ऑफ हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये सारा दिन बोल रहे हैं। और सारा दिन यही बोलते रहे, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, विश्वास, इसको कहते हैं आत्मविश्वास, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, सारा दिन यही चिंतन चलता रहे। मैं आपको बताऊं, जब पहला दिन हम सेंटर पे आए, मैं 6 बरस की थी, मैं पहला दिन जब सेंटर पे आए, कमलमणि दादी मिली, उसने पहले तो मुझे एक गाना सुनाया, बड़े बड़े ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते थे, गाना कौन सा सुनाया, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। फिर बोली, मैं तुमको इस पर डांस करना सिखाऊं, अब ये गजल है, ये डांस का गाना नहीं है। फिर उन्होंने इस गीत पे मुझे डांस सिखाया पहला दिन, फिर मुझे बिठाकर आत्मा का ज्ञान दिया, फिर मुझे 4 बातें याद कराई, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, 10 बार रिपीट करवाया। फिर मुझे कहा कि आज जाओ, कल आने तक यही रिपीट करती रहना, सारा दिन यही रिपीट करती रहना, समझ गए, आप भट्टी में है, आप भी करके देख लेना। अब मैं जब उतरी नीचे सीढ़ी से, और मैं यही चिंतन करती रही, सारा दिन करती रही, भोजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यही सुबह आए तो भी यही, फिर जब मैं आई, फिर उसने मेरे से पूछा सारा दिन क्या चिंतन किया, फिर मैंने सुना दिया, किया सारा दिन, मैं कहा हाँ किया सारा दिन, तो शुरू से ही चिंतन का अभ्यास हो गया। अगर निश्चय रहे कि मैं शांत स्वरूप हूं और प्रेम स्वरूप हूं, तो मेरे हर एक्शन में आएगा ना शांति और प्रेम, मेरे हर एक्शन में आएगा ना, क्रोध नहीं ना आएगा, नहीं तो कहेंगे बिना जोर से बोले तो सुनता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, डांटना ही पड़ता है। अब ये शब्द बोलने बंद कर दे, जब ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए, ये पहले स्वयं की महिमा, फिर अमृत वेले योग में बैठते हैं ना, क्या करें, 1 घंटा बाबा के गुण गाते रहे, अपने काम देकर देखो कितना गुण गा सकते हैं बाबा के, 1.25 घंटा योग में बैठना, 4 से 4:45 कितना गुण गा सकते हैं, ऐसा तो नहीं 8-10 गुण गा के खत्म, ढूंढ ढूंढ के लाओ, ढूंढ ढूंढ के लाओ गुण, बाबा के गुण ढूंढ ढूंढ के लाओ, संकल्प कर लो मुझे पूरा टाइम बाबा के गुण गाने हैं, और बाबा को देखते रहना है, परम धाम को भी देखना है, बाबा को भी देखना है, बाप दादा को भी देखना है, और लगातार गुण गाने हैं, लगातार गुण गाने, इससे हमारा मन शुभ चिंतन का अभ्यास ही हो जाएगा, गुण दर्शन का अभ्यास ही हो जाएगा, पूरे बाबा के गुण गाने हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करके देखना, गा सकते हैं, बहुत गुण अंदर भरे हुए हैं, वो इमर्ज हो जाएंगे, इमर्ज हो जाएंगे। सारा दिन अपने गुण गाएं, बाबा के गुण गाएं, और अपने आसपास रहने वालों के गुण गाएं। एक बार यहां भट्टी हो रही थी, 20-25 बहनें थी, दादी ने पूछा आप सब एक दूसरे को पहचानते हो, कहां पहचानते हैं, अच्छा तो कोई बहन उठकर किसी के 5 गुण सुनाए, आसान है, आसान है, कोई नहीं उठा। फिर दादी ने 10 मिनट टाइम दिया, सोचो अपने भी 5 गुण लिखो, किसी के भी 5 गुण लिखो, अगर इसके बदले में दूसरी बात कही होती, किसी की 5 कमियां सुना दो, वो माल रेडीमेड है वो तैयार है, वो सुना सकते हैं, क्योंकि देखते रहते चिंतन करते रहते, गुण चिंतन ही नहीं करते। अपने आसपास रहने वाले सबके गुण गाए। एक जगह मैं शिविर करा रही थी, शिविर करने वालों को गुण गाने का अभ्यास कराने के लिए एक होमवर्क दिया। हमने कहा कि कल सवेरे जब आप नींद से उठो, जो आपके सामने, पहले घर के ही तो लोग आएंगे, बड़े बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, हर एक को, और रात सोने तक जो भी आपके सामने मिले, एक भी मिस ना हो, हर एक को एक बात कहना। क्या कहना? आप बहुत अच्छे हैं, आपने ये काम बहुत अच्छा किया है। कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति ना जाए जिसे आप ये ना कहो कि आप बहुत अच्छे हैं। एक एक्सपेरिमेंट करो। लोगों ने किया आप भी करना हमारे पास एक माता जी आती थी सेंटर पर, उसको कहते थे कि आप बहुत अच्छी है, कहती है मेरे पियर ससुराल किसी ने मुझे अच्छा कहा ही नहीं आप मुझे अच्छा कहते हैं, मुझे किसी ने अच्छा कहा ही नहीं आज तक। हर व्यक्ति प्यासा है, किस चीज का प्यासा है? प्रशंसा। हर व्यक्ति चाहता है, आप किसी की महिमा किए बिना किसी को सुख नहीं पहुंचा सकते, पक्की बात है ये। कितना पैसा दे दो, गिफ्ट दे दो, सामान दे दो, कोई खुश नहीं होगा। आप उसकी महिमा करो, उसका मन खिल जाएगा। बाबा ने इतने बच्चों को खुश किया, कैसे किया? महिमा करके। पहला महावाक्य, मीठे बच्चे। अब सब बच्चे मीठे बन गए हैं, भाई कड़वा भी बोलते हैं, गुस्सा भी करते हैं, डांट भी लगाते हैं, लेकिन बाबा क्या कहता है? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। एक हमने कभी किसी को कहा है मीठे बच्चे? भाई बड़े मीठे भाई है, बड़ी मीठी बहन है, बोला है कभी? मुख से निकलेगा ही नहीं समझा? तो सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, हर एक को अच्छा अच्छा सुबह से कहना शुरू किया। एक नया काम था, कभी तो किसी को अच्छा कहा नहीं। घर में भोजन बनता है, खा के उठ जाते हैं, कभी तो नहीं कहते अच्छा बना, कभी तो नहीं कहते। कब बोलते हैं? जब मसाला ज्यादा हो, मिर्च ज्यादा हो, कुछ गड़बड़ हो, उस दिन बोलेंगे। बाकी रोज बोलते हैं क्या? कोई नहीं बोलता है। दूसरे दिन कई लोग अपना अपना अनुभव सुनाने आए कि कैसा रहा ये, अच्छा कहने से हमारा दिन कैसा बीता। दो कारपेंटर थे, उन्होंने बताया कि लगभग 3 महीने से किसी के घर में काम कर रहे हैं। बगीचा है, बगीचे के किनारे शेड के नीचे काम कर रहे हैं। उस घर की मालकिन ने कभी एक ग्लास पानी नहीं पूछा था, समझ गए? बोला जब हम गए तो दरवाजे पर ही मिल गई। अब उनको हरे को तो अच्छा कह के गुजरना था, तो उन्होंने उन्हें कहा आपके यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रियल था, बगीचे में काम कर रहे थे, सीन सामने बहुत अच्छा था, वो लोग काम करते थे। उन्होंने उनका परिचय पूछा, कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ते हैं, सारा परिचय पूछा। उसके बाद वो काम में लग गए। बोला 2-2.5 घंटे के बाद इतना प्लेट भर के नाश्ता और चाय आया रोज एक गिलास पानी भी नहीं कभी आया, रोज आता तो उनको फर्क नहीं लगता इसका मतलब है किसी को भी सुख पहुंचाना हो, किसी को भी खुशी देनी हो, तो बिना महिमा के खुशी किसी को हो नहीं सकती। और हमें महिमा की आदत नहीं,
हम कमियां तो वर्णन कर सकते हैं, महिमा नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा मुख है शंख, इससे वरदान ही निकलते रहे, वरदान ही निकलते रहे। एक लिस्ट बना लो, एक दिन सबको कहो आप बहुत अच्छे हैं, दूसरे दिन कहो आप बहुत लकी हैं। समझा? तीसरे दिन कहो आपके मस्तक पर विजय का तिलक लगा है, वो आपको मदद कर रहा है। ऐसे ऐसे रोज आना, कुछ आदत तो पड़े महिमा करने की। बाबा के दिए वरदान देखिए, बाबा ने इतने वरदान दिए दिए ना, ले लिए हैं, ले लिए हैं, स्वीकार किया है। याद रहे मैं शिव शक्ति अवतार हूं। बताइए कैसी स्थिति रहेगी। बाबा ने दिया वरदान लेकिन हमने लिया नहीं है, क्योंकि उस दिन जो दादी क्लास करा रही थी भट्टी में, तो जब बहने पांच गुण सुनाने में थोड़ा सुनाया तो सही किसी किसी ने, लेकिन जैसे बहुत सोचने के बाद बहुत सोचने, फिर दादी ने कहा बाबा ने इतने वरदान दिए हैं, अपने पांच गुण नहीं लिख सकते, लिखो ना जो बाबा ने वरदान दिए सारे लिखो ना। हम कमरे में गए तो हमने वरदान लिखना शुरू किया, तो 400 से ऊपर वरदान लिखे। फिर अपने आप से पूछा बाबा ने तो दिया, वर्षा कर दिया हमारे ऊपर वरदानों की, हम भीगे? हमने लिया? हर टाइम याद रहता है मैं वरदानी मूर्त हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं महावीर हूं, मैं पांडव हूं, मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली हूं। स्वीकार करना है, स्वीकार करना है, फिर दूसरे को भी ऐसा कह सकेंगे। हमने ही नहीं लिया दूसरे को क्या देंगे। मुरली में रोज वरदान आता है ना, आता है, सुनते हैं ना। अब देखना है वरदान सुनते हैं कि लेते हैं। वरदान लिया उसकी क्या पहचान है, वरदान लिया इसकी क्या पहचान है। जो वरदान हमने ले लिया वो हमारे यहां लिखा गया, जो वरदान सारा दिन याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, तब वो एक्शन में आएगा। वो होम्योपैथिक दवाई देने वाला भी कहता है वो दवाई आज नहीं कल एक्शन में आएगी। ठीक है ना। वरदान अगर मुझे यहाँ लिखा गया, मुझे बार बार याद आ रहा है मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, तब वो वरदान एक्शन में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। वरदान आज सवेरे क्या वरदान था याद होगा? किसको याद हो? एक पक्का याद रहे ये मुझे और वो बार बार मेरे चिंतन में आए, बाबा के दिए वरदान मेरे चिंतन में आए। हमें ऐसा महसूस होता है हमारे जीवन का दूसरा नाम है महिमा। अपनी भी बहुत महिमा करो, अपनी महिमा को क्या कहेंगे, स्वमान। भरपूर बाबा की महिमा करो, इतनी महिमा जो एक घंटा कर सको, इतनी महिमा। बाबा ने कहा गुण देखते देखते गुणवान बन जाओगे, गुणवान बनने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है, खाली गुण देखते जाओ, गुण देखते जाओ, गुण देखते जाओ, अपने में आ जाएगा। अब अवगुण देखते रहते हैं, अवगुण देखते रहते वो अपने में आ जाता है। कल तक कह रहे थे वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, आज देखते हैं वो खुद ऐसा कर रहा है। जो देखते हैं, जो बोलते हैं, वही हमारी एक्शन में आ जाता है। ठीक है ना। तीसरा, सबके गुण गाओ, सबके गुण गाओ, सबको कम से कम, कम से कम अच्छा तो कहो। अच्छा तो कहो, आपने ये काम बहुत अच्छा किया, ये बात बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छा किया। कुछ हर व्यक्ति
अच्छा तो लगे। हर एक के अंदर गुण भरे हैं, हर एक के अंदर ज्ञान भरा है, हर एक के अंदर ईश्वरी शक्ति भरी है। हम उसकी प्रशंसा तो करें, महिमा तो करें। बाबा हर रोज वरदानों की वर्षा करते हैं। एक मुरली में से आप चुन लीजिए, लिस्ट लिखिए कितने वरदान हैं, एक मुरली में से। लेकिन हमने मुख से वर्णन करना नहीं सीखा, हमने इतना छोटा अक्षर नहीं सीखा। बाबा तो पद्मा पद्म भाग्यशाली बोलता है, हम केवल भाग्यशाली तो बोलते हैं। बहुत लकी हो आप तो, सब काम आपके आसानी से हो जाते हैं। बड़े ऐसे एक दिन सबको बोलो ना ऐसे। जब तक हम महिमा नहीं करेंगे, महिमा करते करते हम महान हो जाएंगे। बाबा ने हमको महान कैसे बनाया? बच्चे तुम विशेष आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो, तुम पुण्य आत्मा हो। कहते 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 बना दिया, यही है ना। लेकिन हमने अपने को विशेष आत्मा माना ही नहीं, श्रेष्ठ आत्मा माना ही नहीं। अब वो स्वीकार करना और फिर औरों के लिए भी हमारे मुख से वो विशेष निकले, आप विशेष आत्मा हैं, आप श्रेष्ठ आत्मा हैं, आप महान आत्मा हैं, आप बाबा के अनमोल रतन हैं, आप बाबा के नूरे रतन हैं, बाबा के दिल तख्त नशीन हैं, प्रभु पसंद हैं, निकले ना हमारे मुख से। उससे क्या फायदा होगा? हम तो सब खुश रहेंगे, ठीक है, सब खुश रहेंगे। महिमा के बोल महानता की ओर ले चलेंगे। बाबा ने महिमा कर ये नहीं कहा क्रोध मिटाओ, ये विकार मिटाओ, ये विकार मिटाओ, ये नहीं कहा। बाबा ने हमें गुणों की याद दिलाई, तुम शक्ति स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो। पर प्रकृति के पंच तत्व, पंच तत्वों का गुण आनंद नहीं है, किसी तत्व में आनंद नहीं है। सनराइज होता है, बड़ा आनंद आता है। किसको आनंद आया? मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैंने सनराइज देखा, आनंद आया। खा के आनंद आया, मिठाई में आनंद है नहीं, खा के आनंद आया क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूँ। वस्त्र पहन के आना, वस्त्र में आनंद है, पहन के आनंद आया क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। तो मुझे अपने आनंद का गुण प्रकट करना है हमेशा। मुझे अगर हमारे को ऐसा महसूस होता है हम बहुत आनंद में हैं, तो आनंद का मतलब प्रेम भी है, शांति भी है, खुशी भी है, सुख भी है, सबको मिलाकर एक नाम है आनंद। किसी महात्मा से पूछो कैसे हो, वो कभी नहीं कहेगा सुखी है, गृहस्थी कहेगा सुखी है, और वो क्या कहेगा? आनंद में। आनंद में सारी शक्तियां हैं, ठीक है। तो मीठे बाबा ने हमें आनंद स्वरूप बनाया, मीठे बाबा ने हमें शक्ति स्वरूप बनाया, और इन्हीं गुणों को साथ लेकर चलते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।
आप बहुत अच्छे हो दीदी। आप सब भी अच्छे हो ना? हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा है ना, ये सीख लिया क्या? सही राह दिखाई ना, सही राह दिखाई ना, ये फैक्ट है ना? अगर आपस में भी कहेंगे ना कि आप बहुत अच्छे हो, तो वैसे ही अच्छे हो जाएंगे। और किसी ने कहा, वो बताया, कह रहे हैं हमें जो जानना जरूरी था वो आपने बताया, इसलिए मैंने कहा ना आप बहुत अच्छे हो आप सबकी तरफ से बोला किसी ने कहा कि हम सुनते हैं टन भर, करते हैं मण भर और धारण करते हैं कण भर। तो अभी मैं ऐसा कहूंगी कि हम धारण भी करते हैं टन भर, ऐसा कहे, ऐसा ही कहे ना, क्या ऐसा ही कहे ना कि जो सुनते हैं जितना सुनते हैं उतना धारण भी करना है। यही तो बाबा सिखा रहे हैं ना। उस दिन नहीं जो बात सुना रही थी फाल्गुनी बहन भी शुरुआत में, कि एक तो हम सुनते हैं, अगर उसको इंग्लिश में कहे ना हियरिंग, कानों से सुनना, इंग्लिश में दूसरा शब्द सुनने के लिए है लिसनिंग, मतलब ध्यान से सुनना, तो दूसरा है ध्यान से सुनना, और तीसरा है सुनना माना करना। जैसे नहीं आप कई बार कहते हो गृहस्थी में माता पिता होते हैं ना अपने बच्चों के, ये मेरा ना सुनता ही नहीं है, सुनता तो है कान तो है पर करता नहीं है ना, इसलिए कहते सुनता ही नहीं है, ऐसा ही होता है ना। तो तीसरा सुनना तो वो सुनना, इसलिए दीदी भी जो कह रही थी ना हम सुनते तो हैं लेकिन अब करना है, यही बाबा ने हम बच्चों को भी सिखाया है। तो हम ये प्रॉमिस करें, प्रॉमिस करें कि जितना सुनेंगे, सुने भले कण भर लेकिन करें तन भर, ठीक है, ऐसा करें तो एक हाथ की ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शब्द तो औपचारिक शब्द है, औपचारिक ही कहेंगे ना अब विशेष भट्टियां कराने के लिए, क्लासेस कराने के लिए ही आप विशेष, मुजफ्फरपुर बहुत दूर है यहाँ से,
दो दिन लग जाता है
रास्ते में ही, 2 दिन लग जाता है। तो आप सोचो गुजरात से आना आसान है, बम्बई से आना भी आसान है, लेकिन ईस्टर्न माना दूसरा भारत का बिल्कुल एकदम दूर का कोना है मुजफ्फरनगर, आसाम को तो 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं, कहाँ खाना नहाना ना सोना वो सब रास्ते में ही कितना समय बीत जाता है। कई बार हम दीदी बम्बई में भाई बहनों को कहते हैं, कभी कोई कहता है ना कि भाई टाइम नहीं फुर्सत नहीं, मैंने कहा उन भाई बहनों को देखो जिनको हफ्ता तो आने जाने में लगता है, क्योंकि ईस्टर्न को हफ्ता तो आने जाने में लग जाता है और बाकी फिर हफ्ता यहाँ। तो एक बार हमने पूछा था, शायद आसाम के भाई बहनों से पूछा था, तो कहा जब हम बाबा मिलन के लिए आते हैं तो हम 15 दिन की छुट्टी लेकर आते हैं, कुछ भाई बहनों को तो 4-5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है, वो भी भारी पड़ती है, बम्बई वालों को तो बहुत भारी पड़ती है ना, समझते हैं बस आए बाबा से मिले अगले दिन चले जाए। तो हम उनको सिखाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो, लेकिन आप देखो कहाँ से विशेष दीदी हम सबके लिए यहाँ पर आए हैं, तो हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। भले मैंने कहा धन्यवाद तो औपचारिक है लेकिन आप समझ जाना आप बार बार पूछ रहे थे ना, समझ गए ना इसलिए आप समझ जाना कि हम भी दिल से आपका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। ओम शांति। अभी 7:30 बजे तक योग का कार्यक्रम है।
अच्छे हो Thank you.